أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. آج ہماری پانچویں کلاس ہے کامیاب فیملی کے حوالے سے, اور پہلے ہم خلاصہ کریں گے ان تمام گفتگو کا جو ہم نے اب تک چار کلاسز میں کی, یعنی ایک سمری پیش کریں گے اس کی کہ کیا ہوا, ہم نے کہاں سے اسٹارٹ لیا اور اب ہم کیا آگے جا کے ڈسکس کریں گے. کامیاب فیملی کو ہم لوگوں نے تین ایریاز میں ڈیوائڈ کر دیا تھا کہ اگر ہمیں کامیاب فیملی کے تصور کو دیکھتے تو ہمیں تین اسپیکٹس میں دیکھنا پڑے گا. ایک تھا فزیکل اسپیکٹ جسمانی حوالے سے, ایک تھا روحانی حوالے سے نفسیاتی حوالے سے, اسپریچول اسپیکٹ جس میں اس کا ایموشنل بھی ہے اس کا انٹلیکچوئل بھی ہے, اور تیسرا اس کا سوشل اسپیکٹ ہے سماجی پہلو جہاں پہ لوگ مل کر ساتھ رہ رہے ہیں. ان تین ایریاز میں ہمیں کامیاب ہونا ہے تاکہ ہماری فیملی کامیاب ہو سکے. اس میں سب سے پہلے ہم نے یہ بتایا تھا کہ کامیاب انسان کامیاب گھر بنائے گا اور پھر کامیاب معاشرہ بنے گا. اس لیے ہمیں یہ فوکس کرنا ہوگا پہلے کہ میری فزیکل ایگزسٹنس جو ہے, میرا جسمانی جو قوت ہے توانائی ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے, یعنی میں جسم کے حوالے سے فٹ ہوں یا نہیں, ہیلتھی ہوں یا نہیں, یہ جاننا بہت ضروری ہے. اس کے لیے آپ کی ڈائٹ, آپ کا کھانا پینا, آپ کا ریسٹ کرنا اور تمام چیزیں, آپ کی پلان, آپ کا تندرستی, یہ تمام چیزیں اس پروگرام کے اندر آتی ہیں کہ جس میں آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ میں فزیکلی صحیح ہوں یا نہیں ہوں, میرے گھر کے افراد فزیکلی صحیح ہیں یا نہیں ہیں. فار ایگزامپل ماں بیمار ہے یا باپ ایک بیمار ہے, اس کی طبیعت صحیح نہیں ہے, از ایل, تو ظاہر سی بات ہے جو انسان مستقل بیمار رہ رہا ہوگا, کمزور ہوگا, تو وہ چڑچڑا بھی ہوگا, اس کو غصہ بھی جلدی آئے گا, وہ گھر کے کام صحیح سے انجام نہیں دے سکے گا. اگر ماں ہے تو بچے کی بھی کیئر کرے, کوکنگ بھی کرے, 10 کام کرے, وہ نہیں کر پائے گی کیونکہ اس کے اندر اسٹرینتھ نہیں ہے, ویکنیس ہے, ویکنیس موجود ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم فزیکلی فٹ ہوں, جسمانی حوالے سے فٹ ہوں, ہمارے سونے کا ٹائم, اٹھنے کا ٹائم, کام کا, ہر چیز پلانڈ ہو, تو ہماری ایک پارٹ, ایک کامیابی ہماری اچھی ہو جائے گی. یعنی اگر ہم کامیابی کو تین حصے میں ڈیوائڈ کریں تو اس کا ایک حصہ صحیح ہے, یعنی فزیکلی کوئی پرابلم نہیں ہے, نہ میاں کو ہے, نہ بیوی کو ہے, نہ کسی گھر کے کسی اور افراد کو ہے, ان کا اپنا زندگی ایک پیٹرن پر صحیح چل رہی ہے. اب دوسرا مرحلہ آتا ہے آپ کی اپنی آئیڈینٹیٹی, آپ کی اپنی شناخت, یعنی کیا آپ اپنے آپ سے آگاہ ہیں, یو آر اویئر اباؤٹ یور سیلف, آپ جانتی ہیں کہ آپ کی نیڈس کیا کیا ہیں, آپ کی وانٹس کیا کیا ہیں, آپ کی لائکنس کیا کیا ہے, کس چیز کو آپ پسند کرتی ہیں, کس چیز سے آپ محبت کرتی ہیں, آپ کی اپنی صلاحیتیں کتنی ہیں, آپ کے اندر کیا ایبلٹی ہے, آپ کے اندر کتنا پوٹینشیل موجود ہے, اس سے آپ اویئر ہیں یا نہیں ہیں, آپ کا ایریا آف انٹرسٹ کیا کیا ہے کیا نہیں ہے, یہ تمام باتیں آپ کا جاننا بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے بارے میں بہت اچھی طرح جانتی ہوں اپنے آپ کو, یعنی آپ سیلف اویئر ہیں یا نہیں ہیں کہ کن باتوں سے آپ کو غصہ آتا ہے, کن باتوں سے آپ کو نفرت ہے, کن باتوں سے آپ کو محبت ہے, کیا ہے کیا نہیں, یہ جاننا بہت ضروری ہے.
And no.
You can start at the same time.
Okay.
You can work on yourself and then you can work on your physical aspect also. Once you are planning for example, a future plan, you make a long-term goal and short-term goals, and that short-term goals you can put your physical aspect, your intellectual aspect, your emotional, your family, and then gradually you put each and everything one at a time. So it's not that only first you go for the physical, then you go for the intellectual, then you go for the other. That will be too late then. You have to start at the same time, but after a year or so, then they will be neutralized. They will be equal. جب آپ اپنے آپ کو فوکس کر لیں گی, جب آپ اپنے اوپر کام کریں گی کہ مجھے اپنے آپ کو انٹلیکچولی بھی, ایموشنلی بھی اور فزیکلی بھی فٹ رکھنا ہے, اچھا رکھنا ہے, تو پھر فیملی ممبرس کو آپ فوکس کریں گی کہ میرے فیملی ممبرس کس اسٹیٹ میں ہیں, مجھے اپنے شوہر کے بارے میں میں کتنا جانتی ہوں, कि मेरे शौहर को क्या चीज़ पसंद है क्या चीज़ नहीं पसंद है, उनके प्रिंसिपल्स हैं या नहीं है, और अगर हैं तो वो क्या है, उनको क्या चीज़ बुरी लगती है, उनको क्या चीज़ अच्छी लगती है, किससे वो इरिटेट होते हैं, किससे वो नहीं होते, उनके बारे में आप कितना जानती हैं, अपने शौहर को आप कितना स्टडी किया है आपने। क्योंकि ये प्री मैरिज में हम लोग बताते हैं कि प्री मैरिज में एक कोर्स में ये बताते हैं कि आपको शादी के फौरन बाद जो लाइफ आपने स्टार्ट की है उसमें आपकी मेंटालिटी स्टडी करने की होनी चाहिए मियाँ को, ना कि जजमेंट पास करने की कि ओ ही इज़ नॉट लाइक दिस, ही इज़ लाइक दिस, ही इज़ नॉट मैचिंग, और वी आर नॉट, ही इज़ नॉट माई टाइप, ये जजमेंट नहीं होता। अगर शादी के बाद ये जजमेंट शुरू हो जाए तो इसका मतलब है कि शादी फिर आगे जाके वो ख़त्म हो जाएगी इसकी जो स्ट्रेंथ है, क्योंकि हमें लर्निंग प्रोसेस में जाना होता है, बिकॉज वी हैव टू वर्क टुगेदर। जब हमने कबूल कर लिया है, शादी को कबूल कर लिया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट कर लिया है, तो और साथ काम करने का इरादा किया है, साथ ज़िंदगी गुजारने का इरादा किया है, तो फिर अब ये देखना है कि हाउ वी गोइंग टू वर्क टुगेदर। तो फिर इसमें ये नहीं होता कि ये मेरे टाइप का नहीं है, ये वैसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है, इसको ऐसा होना चाहिए, मुझे वैसा होना चाहिए, यहाँ अब ये सोच नहीं आनी चाहिए। अब ये सोच आनी चाहिए कि अच्छा ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा नहीं है, फाइन, मुझे इसके साथ कैसे एडजस्ट करना है, क्योंकि लाइफ में करना ही आपको एडजस्ट है, जैसे एनवायरनमेंट में आपको एडजस्ट करना है। अगर आपको इस एनवायरनमेंट में आना है, ईरान में आना है, तो हिजाब करना है, वरना आप ईरान में नहीं उतर सकती, तो यहाँ पे एडजस्ट करना है। इसी तरह आपकी शादी की है, आपको उस शख्स के साथ एडजस्ट करना है, वो ठीक हो सकता है वो अप टू स्टैंडर्ड या अप टू मार्क नहीं हो आपके, लेकिन हो सकता है आप भी बहुत सारी जगहों पर उसके मुकाबले में ना हो। एक नौजवान कपल से मुलाकात हुई, उनकी शादी को 3 साल हुए थे, और दोनों इस स्टेज पर पहुंच गए थे कि अब डिवोर्स ले रहे। जब उनसे बात हुई तो उस नौजवान ने कहा कि मैं शुरू में आई वॉज जस्ट 18, मेरी उनसे मुलाकात हुई और उसके बाद हमारी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई, हम लोग फ्रेंड्स थे, फिर बस वो 19 में जाके मैंने शादी कर ली और नाउ आई एम 22, तो आई डोंट थिंक कि हम लोग आगे चल सकते हैं क्योंकि वो मेरे टाइप की नहीं है और उसकी तमाम चीज़ें उससे डिफरेंट हैं जो मैं हूँ। मैंने कहा इस बात की क्या गारंटी है अगर आप दूसरी शादी करेंगे वो जो बीवी आएगी उसके आप टाइप के होंगे, सकते हो वो आपसे पलट के कहेंगे तुम भी उतने टाइप के नहीं हो मैं जितना मैं सोचती हूँ, तो फिर क्या होगा। इसी तरह आपको आपके टाइप का नहीं मिलता आदमी, किसी हद तक मिलता है, बाकी आपको बनाना पड़ता है, क्योंकि लाइफ शेयर करने का खाली नाम नहीं है, बिल्ड करने का नाम है। लाइफ को आपको बिल्ड करना है, मियाँ बीवी को मिलकर बिल्ड करना है, ना कि सिर्फ शेयर करना है। देखिए वेस्टर्न सोसाइटी में अगर आप थोड़ा सा वेस्ट में, क्योंकि आप खुद रहती हैं और मेरे गुफ्तगु होते होते खवातीन के ऊपर ज़्यादा फोकस हो जाती है, क्योंकि मर्द हज़रात क्लास में नहीं होते तो उनकी बात नहीं मैं ज़्यादा कर पाता, ज़्यादातर मैं आप लोगों के हिसाब से बात कर रहा था। आप लोग एक इंडिविजुअल सोसाइटी में रहती हैं, जब आप एक इंडिविजुअल सोसाइटी में रहती हैं और आपका इन्वायरमेंट आपको आपके इक्वल राइट्स की बात सिखाता है, तो फिर आप मर्द को अपने बराबर देखती हैं, फिर आप हर चीज़ हाफ हाफ करती हैं, आप जॉब करती हैं वो भी जॉब करता है, आप घर का भी खर्चा शेयर करती है वो भी शेयर करता है, हर चीज़ हाउस रेंट भी दे रहे हैं तो वो भी हाफ हाफ है, बिल्स देनी वो भी हाफ हाफ, हर चीज़ आधा आधा है। लेकिन शादीशुदा ज़िंदगी ऐसी नहीं होती कि हर चीज़ आधा आधा हो, शादीशुदा ज़िंदगी में ये देखना होता है कि मेरा रोल क्या है और इसका रोल क्या है, आधा आधा नहीं होता, क्योंकि वहाँ इक्वल नहीं होते शादीशुदा ज़िंदगी में, मियाँ बीवी दोनों इक्वल नहीं होते, बल्कि दोनों की इवैल्यूएशन जो है वो उनके कैपेसिटी और पोटेंशियल के हिसाब से होती है, यानी ये खातून को क्या चाहिए उसकी क्या ज़रूरत है वो मर्द को देना है, और औरत को क्या चाहिए औरत की क्या ज़रूरत है वो औरत को, वो मर्द देगा और मर्द को औरत देगी। इसलिए जब आप वेस्ट में बड़ी होती हैं तो आपके इन्वायरमेंट में आपको ज़्यादा पावर्स दिए, वेस्ट में लड़कियों के पास ज़्यादा पावर्स है, बेनवान वाइफ वो तो अपने मियाँ को कोर्ट में ले जाए तो उसकी हालत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि उससे वो पावरफुल नहीं है, लेकिन हमारे ईस्ट में वो पावरफुल है, मर्द पावरफुल है, औरत पावरफुल नहीं है। तो वहाँ जो इंसान ब्रॉट अप होगा, जो बड़ा होगा, उसकी सोच टोटली डिफरेंट होगी उस लड़की के मुकाबले में जो वेस्ट में बड़ी हुई है, उसके पास फ्रीडम ज़्यादा है। वेस्टर्न लड़कियाँ फ्रीडम चाहती हैं, जिस तरह से उनकी सोशलाइजिंग है वो शादी के बाद भी उसको वैसे रखना चाहती हैं, उनके लिए इट्स नॉर्मल। लेकिन ईस्ट में ऐसा नहीं है, ईस्ट में बिल्कुल एक अलग तसव्वुर है। ठीक है, ईस्ट के अंदर भी क्लास है, हर क्लास की अपनी है, लेकिन नॉर्मली ईस्ट में ऐसा नहीं है। तो वो राइट्स, वो ब्रॉटअप, वो विजन जो आपका है वो ईस्ट के लड़के का कहीं पर भी नहीं होगा। तो आपको देखना पड़ेगा कि अच्छा मैं ऐसी हूँ, हमारी लड़कियाँ ऐसा सोचती हैं और ईस्ट के लड़के ऐसा सोचते हैं, इनका ब्रॉटअप ये, तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे कैसे एडजस्ट करना है ताकि हम जिंदगी अच्छी गुजार सकें। बहुत सारे कपल्स हैं अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बहुत सारे कपल्स हैं बस गुजार रहे हैं, और बहुत सारे कपल्स डिवोर्स ले चुके हैं। अमूमन जो वेस्ट में शादियाँ होती हैं, ईस्ट की शादियाँ वेस्ट में होती हैं, उनमें लड़कियों का डिवोर्स रेट ज़्यादा है, यानी वो लड़की जो वेस्ट की है और लड़का ईस्ट का है तो डिवोर्स रेट ज़्यादा है उसके मुकाबले में कि लड़की ईस्ट की और लड़का वेस्ट हो। क्यों? क्योंकि वहाँ की सोच अलग है, वहाँ की लड़कियों की सोच अलग है, उनकी अपनी आदतें अलग है, उनके अपने ज़िंदगी गुजारने का अंदाज़ अलग है, तो उससे मुश्किल पैदा हो जाती है ज़िंदगी में। तो हमें समझना होता है कि अच्छा जिस इंसान के साथ अब मेरा बंधन बन गया है, उसके साथ मुझे ज़िंदगी गुजारनी है, तो इसकी क्या पोटेंशियल्स हैं, इसकी क्या एबिलिटी है, इसके अंदर क्या बात है ऐसी क्या नहीं है, जिसको मैं समझ लूँ और फिर मैं उसके साथ ज़िंदगी गुजार लूँ, तो फिर ज़िंदगी ईजी हो जाएगी। लेकिन अब आप कहेंगे ना दिस इज़ द वे आई एम, यू हैव टू एक्सेप्ट मी और फिनिश इट। इस तरह किसी के साथ भी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, कोई भी नहीं गुजार सकता, क्योंकि आपने शादी की है, यानी आपको साथ लेके चलना है, आगे लेके चलना है, डेवलप करना है और एक दूसरे को हेल्प करना है कि वो अपने आप को एक परफेक्ट बीइंग बनाए। तो वो जब भी मुमकिन है जब हम एक दूसरे को आइडेंटिफाई करते हो, सही से समझ सकते हो। यानी मुझे कंप्यूटर ऑपरेट करना है, मैं कैसे ऑपरेट करूँगा अगर मुझे आता ही नहीं होगा, तो मुझे सीखना पड़ेगा ताकि मैं ऑपरेट कर सकूँ। यहाँ जो हमने जो अब तक खुलासा करना है आज की क्लास में, उसमें यह बताया था कि मियाँ बीवी की रिलेशनशिप को स्ट्रांग रहने में ये ज़रूरी है कि दोनों मियाँ बीवी चाहते हो कि हमारी फैमिली अच्छी हो, अच्छी बने, हमारे ताल्लुकात अच्छे बने, इसके ऊपर काम करने का इरादा हो, शौक़ हो, और दोनों मियाँ और बीवी का सेल्फ कंट्रोल अपने ऊपर हो। अगर हम लोगों का सेल्फ कंट्रोल नहीं होगा, हम लोग अपने एहसासात, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते होंगे, तो क्या प्रॉब्लम होगी, हम नॉर्मल स्टेट में नहीं होंगे। हम लोग को हमेशा एक नॉर्मल हालत में रहना है, एट ईज। देखिए डॉक्टर के पास जब पेशेंट जाता है तो वो बहुत अजीब हालत में होता है पेशेंट, लेकिन डॉक्टर भी नहीं उसको देखे घबरा जाता, हाय क्या हो गया पता नहीं, नहीं वो नॉर्मल होता है, कहते क्या हुआ, दर्द हो रहा है, अच्छा कहाँ हो रहा है, चेक करते उसको, फिर उसको नॉर्मल करता है आस्ते आस्ते, आधे घंटे के अंदर वो पेशेंट नॉर्मल हो जाता है कि हाँ डॉक्टर ने मेरी बात सुनी, मेरा दर्द भी कम हो गया, ये वो, डॉक्टर को पता होता है मुझे कैसे ट्रीट कर रहे हैं। इसी तरह आपके लिए भी ज़रूरी है कि जो अनुमान एक घर के अंदर एक फर्द एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, उसके लिए भी ज़रूरी है कि वो किसी भी स्टेट में अप एंड डाउन लाइफ में आते तो वो नॉर्मल स्टेट में रहे, तभी आप डिसीजन सही ले सकेंगी। लेकिन अगर आप हमेशा इमोशनल लॉस के स्टेट में होंगी तो आपके डिसीजन भी सही नहीं होंगे लाइफ के अंदर, आपको अच्छी बुरी लगेगी, इसको फिर बाद में डिफाइन करूँगा। लेकिन काम आपका ये कि आपको नॉर्मल स्टेट में रहना है, तो फिर आप काम अच्छा कर सकेंगे, आप प्रोग्रेस कर सकेंगी, अपने आप को नॉर्मल स्टेट में रखेंगी। और दूसरा ये कि आप पहले से प्लान करेंगे कि अगर कोई हालात ख़राब होते हैं, कोई मुश्किलात ज़िंदगी में आती है, तो इसका मुझे क्योर क्या करना है, इसकी प्रिकॉशंस मुझे कैसे लेनी है, इसको आप अभी से प्लान कर लें कि फर्स्ट करें अगर मेरी ज़िंदगी में ये टर्न आया तो मुझे इसके लिए क्या करना है। फ्यूचर को आप प्रिडिक्ट करेंगी कि फ्यूचर में क्या हो सकता है पॉसिबल, तो मैं उसके लिए क्या एहतियात अभी से करूँ ताकि वो चीज़ ना हो। लेकिन अगर मैं करूँ ही ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। मिसाल के तौर पे मर्द की आदत ये होती है, बेगुमाने शौहर की आदत ये होती है कि जो बच्चा उससे ज़्यादा रिजेंबल करता है, उसकी आदतें उसके अंदर पाई जाती हैं, उसको उससे ज़्यादा मोहब्बत हो जाती है उसके मुकाबले में जो दूसरे बच्चे होते हैं। लेकिन माँ सबसे इक्वल मोहब्बत करती है, उसके लिए हर बच्चा उस प्यारा है, उसको उससे मोहब्बत है। लेकिन वो कहेंगे ये अभी मेरे ऊपर दिया, इसकी आदत मेरी तरह, उसको ज़्यादा प्यार करेगा, आपको बुरा लगेगा, आप कहेंगे आप इंसाफ नहीं करते और सारे बच्चे मेरे हमारे बच्चे और ये अच्छे बच्चे और इस तरह। लेकिन एक मर्द है ऐसा, उसकी कुछ आदतें ऐसी। या बाज़ दफ़ा बच्चे होते हैं जो माँ बाप को अपनी तरफ पुल करते हैं, ना कि खुद बाप जा रहा होता है बच्चे की तरफ, बल्कि उन चार पांच बच्चों में अगर आज के दौर में हो, वरना अगर दो तीन ही बच्चे हो, तो जो बच्चा अपने माँ बाप को ज़्यादा उसके करीब जाता है, माँ बाप को वही ज़्यादा अच्छा लगने लगता है क्योंकि वो ज़्यादा ख्याल रखता है, पूछता है, केयर करता है। तो मर्द औरत में ये डिफरेंस होता है कि माँ हर बच्चे से प्यार करती है, मोहब्बत करती है और उसका इक्वल ख्याल रखने की कोशिश करती है, लेकिन बाप की झुकाव उस बच्चे की तरफ ज़्यादा होता है जो उससे ज़्यादा रिजेंबल करता है। इसी तरह ख्वातीन में खर्च, पैसे का खर्च करने का ट्रेंड लड़कों के मुकाबले में, मर्दों के मुकाबले में कम है, यानी ख्वातीन फजूल खर्च कम करती हैं लेकिन मर्द फजूल खर्च भी ज़्यादा करते हैं। हालांकि आजकल ऐसा बहुत कम है, आजकल ख्वातीन ज़्यादा खर्च करती हैं, लेकिन अक्सर देखने में यह है कि खर्च करने से मुराद यहाँ पर फजूल खर्च है, यानी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस करना ख्वातीन में कम है, वो पैसे को बचाने की सोचती हैं लेकिन मर्द ज़्यादा खर्च करने की सोचते हैं। ये दोनों का अंदाज देखने का। इसीलिए शादी से पहले एक एडवाइस ये दी जाती है कि लड़का लड़की एक दूसरे से पूछे कि आर यू अ स्पेंडर और सेवर, क्या हैं आप, ताकि आपको आप उसी से प्लान करें। अगर आपको मियाँ कहेंगे भी मैं तो बहुत लैविशली खर्च करता हूँ और आई इन्जॉय, तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे एक बैंक अकाउंट अलग से खोलना पड़ेगा हर टाइम्स के लिए ताकि प्रॉब्लम्स ना आए। मर्द जो है वो देख कर आशिक होता है, देख कर पसंद करता है, अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट होता है, उसकी आदत इस तरह है, लेकिन ख्वातीन सुनकर होती हैं, ख्वातीन सोच कर सुनकर अट्रैक्ट होती हैं। इसीलिए हमें देखना होता है कि हम ख्वातीन को कहा जाता है, बीवियों को कहा जाता है कि आप हमेशा अपने आप को मियाँ के लिए डेकोरेटेड रखें, आप हमेशा मियाँ को अपने लिए सजा के रखें ताकि वो जब भी आपको देखे वो अट्रैक्टिव फील करें, क्योंकि बाहर सोसाइटी में बहुत सारी अट्रैक्शंस हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो अगर बीवी सोचेगी आप शादी हो गई, आप बच्चे भी हो गए, अब क्या ज़रूरत है, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि बाहर इतनी ज़बरदस्त अट्रैक्शन मौजूद हैं, तो इसलिए ज़रूरी है एक बीवी के लिए कि वो अपने आप को हमेशा सजा के डेकोर करके रखे ताकि मियाँ के लिए उसके अंदर अट्रैक्शन रहे, चाहे वो फिज़िकल हवाले से हो, चाहे वो आउटलुक के हवाले से हो या किसी भी हवाले से हो, और ये ज़रूरी है इसीलिए क्योंकि मर्द देख कर अट्रैक्ट होता है और ख़वातीन सुनकर अट्रैक्ट होती है। इसी तरह और बीवी जो होती है वो मोहब्बत हासिल करना चाहती है, इसलिए वो मियाँ की बात सुनती है, वो मियाँ की बात क्यों सुनती है, क्योंकि इसको मोहब्बत चाहिए, इसलिए उसकी इताअत करती है। अगर करेगी इताअत तो उसको पता है उसका मियाँ उसे मोहब्बत करेगा। मियाँ भी ऐसे ही होता है, मियाँ क्या होता है, मियाँ बीवी से मोहब्बत इसलिए करता है कि वो उसकी इताअत करे, वो उसकी इताअत करे इसलिए वो उसे मोहब्बत कर रहा है। तो जब ये रिलेशनशिप डेवलप होगा तो फिर ज़िंदगी में और मज़ा आएगा। इसलिए अगर आपको ये पता होगा कि जब मैं मियाँ का कहना मानूंगी और मैं उसकी इताअत करूंगी तो उसके दिल में मेरे लिए जगह होगी, वरना नहीं होगी, वरना वो समझेगा कि ये मेरी मुखालफत कर रही है, मेरे अगेंस्ट में आ रही है, तो फिर मोहब्बत कहाँ से आएगी, मोहब्बत आएगी। वैसे कल भी हमने इसको डिस्कस किया था, आज हम उसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि मियाँ की इताअत करना आपके लिए बायस इफ्तिखार होना चाहिए, यू शुड बी प्राउड ऑफ इट कि मैं अपने मियाँ की इताअत करती हूँ, बात सुनती हूँ। और मियाँ को भी सेंसिबल होना चाहिए कि वो ऐसा काम करे कि उसकी बीवी खुद से उसकी इताअत करे, ना कि ज़बरदस्ती, क्योंकि खुदा ने कहा इसलिए मुझे उसकी इताअत करनी है। इसलिए हमने सिर्फ आपको बताया कि हम तीन एरियाज़ पर गुफ्तगू कर रहे हैं सक्सेसफुल फैमिली के अंदर। एक फिज़िकल एस्पेक्ट था जिसमें कुछ बातें बताई थी, एक इमोशनल एस्पेक्ट है जिसपे हम बात कर रहे हैं, और एक तीसरा एस्पेक्ट है सोशल, उस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन इमोशनल एस्पेक्ट के अंदर हम उस मोहब्बत और उस मवद्दत की बात कर रहे हैं कि उसको कैसे डेवलप कर रहे हैं, अगर वो कम हो गई तो कैसे उसको रिस्टोर कर रहे हैं ताकि ज़िंदगी सक्सेसफुल तरीके से आगे बढ़े। क्योंकि जो आपके इंजन का पेट्रोल है वो मवद्दत है मियाँ बीवी के अंदर, जो होना चाहिए। इसलिए हमने एतमाद की बात की, ट्रस्ट की बात की, हमने शुक्र की बात की, हमने आज कल थोड़ा सा आपको बताया था वो सच्चाई के ऊपर था कि मियाँ बीवी के लिए ज़रूरी कि वो एक दूसरे से सच्चाई से बात करें, सच बोलें। कितनी दफ़ा आपकी ज़िंदगी में ऐसा होता है कि जो आप अपने दिल में रखती हैं वो आप अपने मियाँ से भी कह सकती हैं, कितनी दफ़ा ऐसा हुआ है कि जो आपकी फीलिंग्स हैं, जो आपकी सच्ची फीलिंग्स हैं अपने मियाँ के लिए या अपने मियाँ के फर्स्ट रिलेटिव्स के लिए, सास के लिए, आपकी बहू, आपकी ससुर के लिए या नंद किसी के लिए भी, जो आपकी फीलिंग सच्ची है वो आपने अपने मियाँ को शेयर की है, आपने अपने मियाँ को बताई है कि इस वक्त मैं इस स्टेट में हूँ, मैं किस कैफियत में हूँ। मिसाल के तौर पे ख्वातीन अक्सर पास्ट में रहती हैं, जब भी आप उनसे बात करेंगे, वो सोच रही होंगी, तो वो अपने पास में चली जाएंगी। और मर्द जो होता है वो अक्सर फ्यूचर का सोचता रहता है, इसीलिए जब वो बेडरूम में आपके साथ होता है, बेड पे लेटा हुआ होता है, आपसे पूछती है, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप किधर है? तो कहते हाँ नहीं, नहीं आप कहते नहीं, ये सर्वेलेंस, आप जिस्मानी हवाले से गए लेकिन मेंटल हवाले से कहीं और है। या वो घर भी आता है, तो वो घर आते हुए खा भी रहा होता है तो कुछ सोच रहा होता है, काम भी कर रहा होता है कुछ सोच रहा था, आप कहते मैं आपसे बात कर रही हूँ, अपने जवाब दें। वो कहते हाँ हाँ, क्या आप ये कह रही थी ना मुझसे? कहीं और होता है वो अपने फ्यूचर प्लानिंग कर रहा होता है, उसमें घूम होता है, उसमें सोच रहा होता है, उसकी अपनी वरीज होती है। जबकि उसको ये अपने आप को मॉडरेट करना होता है, उसको अपने आप को बैलेंस करना होता है कि जब वो घर आ गया तो वो यहीं आ जाए, प्रेजेंट टाइम में आ जाए। और ख्वातीन की जो पास्ट को सोचती रहती है, अपने माजी के वाकयात को, अच्छे अच्छे जो हुए हैं उनकी ज़िंदगी में, उसको याद कर रही होती है, उनसे कहते हैं अच्छा आप वापस आ जाइए, आप भी प्रेजेंट टाइम में, दोनों प्रेजेंट टाइम में घर में रहें, न कि वो पास्ट में चली गई, ये फ्यूचर में घर में कोई नहीं है, दोनों सिर्फ एक फिजिकल एग्जिस्टेंस ही मौजूद है, दोनों मेंटली तौर पर इमोशनली तौर पर घर पर नहीं है। क्योंकि सक्सेस के लिए ज़रूरी है कि आप प्रेजेंट टाइम में रहें और प्रेजेंट टाइम को स्ट्रॉन्ग करें। अगर आप इसमें कामयाब हो जाएंगी तो अपनी लाइफ को जल्दी से ऊपर ले जाएंगी। हम लोग फ्यूचर अच्छा देखना चाह रहे होते हैं और फ्यूचर को अच्छा देखकर सोच रहे होते हैं और उसी में मसरूफ होते हैं, एक आइडियलिस्टिक सोच उसको देखते हैं, तो इसलिए हम क्योंकि आइडियलिस्टिक हो नहीं पाते, वहाँ पहुँच नहीं पाते, हम लोग प्रॉब्लम का शिकार रहते हैं। लेकिन जहाँ पे हम अपने प्रेजेंट टाइम को स्ट्रॉन्ग करेंगे, यानी इस वक्त मुझे अपनी फैमिली को स्ट्रॉन्ग करना है, उसके फिजिकल एलिमेंट को, उसके इमोशनल एलिमेंट को, सोशल एलिमेंट में मुझे काम करना है, उसके लिए मेरा क्या प्लान है, वो अगर अभी मैं करना शुरू हो जाऊँ तो फ्यूचर खुद ही सेफ हो जाएगा। आपने बहुत बड़ी इमारत देखी हुई, बहुत बड़ी बिल्डिंग आपके जहन में आ जाएगी, कोई भी आ सकती है बहुत बड़ी बिल्डिंग, तो क्या ये बहुत बड़ी बिल्डिंग एकदम से बन गई थी? नहीं, ये बहुत बड़ी बिल्डिंग पहले छोटे छोटे ब्रिक्स रखे गए, रखते 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 बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी, और वो एक टाइम के बाद बनी। तो आपको भी यही छोटी छोटी ब्रिक्स अपनी जिंदगी में रखनी है, और रखते 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 कुछ अरसे बाद ये बहुत बड़ी फर्स्ट क्लास जिंदगी में तब्दील हो जाएगी, एक मोहब्बत भरी जिंदगी में तब्दील हो जाएगी। लेकिन ये आपको रखनी होगी, ऐसा नहीं होगा कि एकदम से हो जाए सब कुछ, एकदम खुद से तो होगा भी नहीं, और इस पर काम करना पड़ेगा, उस पर टाइम लगेगा। इसलिए ज़रूरी है कि ये बातें जो हमने आपको बताई हैं ये छोटी नहीं है, यही जिंदगी की वो चीज़ें कि जिनको हम फोकस नहीं करते, हम फोकस दूसरे एरियाज को करते हैं, उससे हमारी लाइफ अच्छी नहीं हो रही होगी। लेकिन हम इन एरियाज को फोकस करें, इस पर काम करें, तो हमारी लाइफ अच्छी होना शुरू हो जाएगी। इन्हीं क्लासेस से आपको लाइफ में चेंज महसूस हो जाएगा अगर आप उसको वर्कआउट करेंगी, लेकिन फॉरन रिजल्ट के पीछे नहीं जाएंगे आप उसको करते रहें चेंज आ जाएगा, लेकिन वो कितना चेंज आता है, कितना तेज़ी से आता है, कितना स्लो आता है, ये सब इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके पेशेंस पर डिपेंड करता है, आपके वर्कआउट पर डिपेंड करता है, आपके लाइफ पार्टनर के अंदर डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितनी एबिलिटी है, क्या है क्या नहीं है। इसलिए हम सिर्फ आज बस सदाकत की करने जा रहे हैं, सच्चाई की करने जा रहे हैं। खुदावंद करीम ने फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस सादिकीन, ए ईमान लाने वालों तक्वा अख्तियार करो, पायस हो जाओ और सच्चों के साथ हो जाओ, जो लोग सच बोलते हैं उन जैसा बन जाओ, उन लोगों के साथ रहो जो लोग सच्चे हैं। क्यों? क्यों खुदा हमें सच्चाई की दावत दे रहे हैं, चाहे हम मियां बीवी की शक्ल में जिंदगी गुजार रहे हों, सोशल एस्पेक्ट या कोई भी, क्यों हमें दावत दी जा रही है कि तक्वा अख्तियार करो और सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। जितने भी अंबिया आए, जितने भी पैगंबर, सब ने सच्चाई की दावत दी है, कहे कि सच बोलो और सच के साथ जियो। आखिर होगा क्या ये सच बोलने से और सच्चाई के साथ जीने से?
If you're a liar, then obviously people don't trust you, and in your own mind you become paranoid. That you know you're always trying to keep up with their lies and not mess up, not slip up. And if you're with truthful people, I guess it inspires you. You become like the people that you're with.
Okay, that's good. क्योंकि सच्चाई जो होती है वो आपको energize करती है, वो आपको चार्ज रखती है हमेशा। सच बोलने वाला इंसान जो होता है उसके अंदर कोई खौफ नहीं होता। जब इंसान के अंदर खौफ नहीं होता, वो डर नहीं होता, खौफ नहीं होता, तो वो अपने फुल पोटेंशियल्स के साथ जी रहा होता है, क्योंकि उसको ये पता होता है कि ये अगर सच्चाई उसके अंदर मौजूद है, तो उसकी मैं तमाम डिटेल्स आपको बताऊंगा, लेकिन सच्चाई जो इंसान के अंदर चीज डेवलप करती है वो शुजात है, ब्रेवरी है। और ये ब्रेवरी जो होती है, आपका ब्रेव होना जो होता है, वो आपको कुव्वत देता है कि आप प्रोग्रेस करें, वरना आप जिंदगी में प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगी, ना खुद करेंगी ना दूसरों को करने देंगी, और एनवायरमेंट ऐसा बन जाएगा कि आपके घर में मोहब्बत कम हो जाएगी। मियाँ बीवी की जिंदगी में मोहब्बत में इजाफा अगर होना है, तो वो एक उसका जो एलिमेंट है, फैक्टर है, वो सच्चाई है कि बीवी मियाँ से सच्ची हो, मियाँ बीवी के साथ सच्चा हो, सच बोलते हो दोनों। जब दोनों एक दूसरे के साथ सच्चे रहेंगे तो मोहब्बत आगे बढ़ेगी, उसको चांस मिलेगा कि वो ब्लॉसम हो। दूसरी चीज ये होती है कि आप सच बोलने से आपके अंदर लालच खत्म हो जाती है, तमाम खत्म हो जाता है इंसान के अंदर, कि जो दुनिया को हासिल करने का या किसी चीज को हासिल करने की, झूठी झूठ बोलता है इंसान किसी खौफ की वजह से या किसी चीज की लालच की वजह से, लेकिन जब सच बोलता है तो उसकी ये लालच का खत्म हो जाता है एलिमेंट उसके अंदर से, उसके अंदर एक इखलास आ जाता है, प्योरिटी आ जाती है। ये प्योरिटी आना, ये इखलास आना, ये उसकी ज़िंदगी को खुशगवार बना पाता है। यानी अगर एक मियाँ बीवी की ज़िंदगी जो कि एक आईने की मानद है, उस पर एक डस्ट है, तो सच्चाई उस डस्ट को हटा देती है, वो दोबारा से चमकने लगता है। हम लोग को ज़िंदगी में समझ में नहीं आ रहा होता कि ये ज़िंदगी जो हम गुजारे वो मोहब्बत क्यों नहीं है मियाँ बीवी के दरमियान जो होनी चाहिए, वैसे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। उसकी वजह जो होती है, एक उसकी वजह ये होती है कि हम लोग सच्चाई से नहीं बात कर रहे होते। जब ये भी दोनों एक दूसरे के साथ सच्चाई से नहीं बात कर रहे होते तो चांस नहीं बनता कि चीज़ें डेवलप हों, क्योंकि हम खौफ में फिर हज़ारों चीज़ें गलत भी करने लगते हैं। इसलिए मियाँ बीवी के लिए ज़रूरी है कि वो एक दूसरे से सच्चे हों। अरे हर बात सच्ची बता दें, हर बात सब कुछ कर दें, उसकी एक अलग डेफिनेशन है, अलग क्लासिफिकेशन है। लेकिन ये बात याद रहे कि एक तो आपको सच्चे लोगों के साथ रहना है, और दूसरा आपको सच बोलना है। अच्छा, ये भी सच बोल दें कि अगर आपका शौहर आपके साथ बदतमीजी करता है तो आप कहें तुम बहुत बदतमीज हो, ये क्योंकि मैंने क्लास में सुना है कि सच बोलना है तो मैं सच बोलूँगी, और तुमने ये भी किया, ये भी किया, सारी चीज़ें गिनवा दी इसको, तुम्हारी सारी बुराइयाँ जो है गिनवा दी। नहीं, ये यहाँ पर सच नहीं बोलना आपको, ऐसा सच के जिससे लड़ाई झगड़ा हो, ऐसा सच के जिससे दूसरे का दिल दुखे, ऐसा सच खुदा को भी नहीं पसंद है। हाँ, अंदाज कैसा होना चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेथड क्या होना चाहिए किसी को ये बताने का कि आपकी ये बात मुझे बुरी लगती है, वो मेथड के ऊपर हम बाद में बात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ ये बात जानना जरूरी है कि जो आपकी सच्चाई है वो सच्चापन आपके मियाँ को पता होना चाहिए कि मेरी बीवी मेरे लिए ऑनेस्ट है, ट्रू है, वो जो भी बोलती है वो सही होता है, सही बात करती है। You have to keep yourself away from people that lie then. You can't keep always, you can't keep away from them all the time, but that lash should not harm you. You know, you have to protect yourself. You have to have a shield because in our community or wherever we move around, we find people, they lie. Yes, you know, being with liar will affect my life, will destroy my life, but there are people, they lie accordingly. So we have to be safe. We have to protect ourselves in such a way that he should not affect us, or that person should not affect us. But you find liar everywhere. You can't live without them. But if you find the people who are good, you try to be with them. That is the best thing. इसी तरह सच्चाई जो होती है वो आपके अंदर पीस लेकर आती है, आपके अंदर ट्रस्ट लेकर आती है, खुद आपका अपने लिए। जब आप सच बोलती होगी तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा होगा, वो कॉन्फिडेंस कहाँ से होगा कि आपको सुकून होगा और आपको अपने ऊपर ट्रस्ट होगा। अब जब आपको अपने ऊपर ट्रस्ट होगा, कॉन्फिडेंस होगा, तो आपकी एक शख्सियत बनेगी, आपकी एक पर्सनैलिटी बनेगी। वो पर्सनैलिटी जो आपकी बनेगी वो इफेक्टिव होगी दूसरे के ऊपर। यानी मियाँ और बीवी के रिलेशनशिप में अगर बीवी सच बोलती है और सच्ची है अपनी ज़िंदगी के अंदर, तो मियाँ उसका असर लेगा, उसका उसके ऊपर उसका इफेक्ट होगा, वो उसकी इज्जत करने लगेगा। बेशक वो जाहिर ना कहे, लेकिन दिल में वो उसकी इज्जत करेगा कि वो ऑनेस्ट है, वो सही है। सच बोलती है। और इसी तरह मियाँ भी, अगर मियाँ भी सच बोलता होगा, अपनी कमिटमेंट पूरी करता होगा और सच्चा निकलेगा, तो बीवी भी अंडर प्रेशर आएगी उसके कि भाई इज अ मैन, यू नो, कहता है वो करता है, वो अपनी वादा पूरा करता है, वो जो कहता है वो ट्रू होता है, तो वो उससे इम्प्रेस होगी। इसी तरह मियाँ के लिए भी ज़रूरी है, बीवी के लिए भी ज़रूरी है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ सच्चाई के साथ जिए। जब आप सच्चाई के साथ जी रहे होंगे तो नतीजा क्या होगा, आप लोग मिलके काम करने का सोचेंगे, आप लोग मिलके वर्कआउट करेंगे, दोनों मिलजुल कर काम करेंगे। और दोनों मियाँ बीवी जो घर के अंदर जी रहे हैं, उनका सच्चा होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये जो एनवायरनमेंट बनाने जा रहे हैं, ये जो सोसाइटी बनाने जा रहे हैं छोटी सी, अगर इसमें झूठ होगा तो क्या होगा, वो होता है जो आपकी आपकी हुकूमत में होता है। यानी अगर आपको पता हो कि जिस हुकूमत में आप जिंदगी गुजार रहे हैं वो हुकूमत सच्ची नहीं है, दे आर नॉट ऑनेस्ट विद यू, आपकी गवर्नमेंट आपके साथ ऑनेस्ट नहीं है, तो आपको कैसा फील होगा, इनसिक्योर हो जाएंगे। तो बच्चे भी इनसिक्योर हो जाते हैं, तब देखते हैं कि माँ बाप एक दूसरे से झूठ बोलते हैं, गलत काम करते हैं, तो वो इनसिक्योर फील करते हैं। इसलिए हमें अपनी जिंदगी को गुजारने के लिए न सिर्फ ये कि मियाँ बीवी की जिंदगी, बल्कि हमारा रब्ता तो खुदा के साथ है, खुदा से कहते हैं सच के साथ जिए, हकीकत के साथ जिए। अमीर मोमिनीन क्या फरमाते हैं कि हर सच्चाई जो है वो इस्लाह करती है हर चीज़ की, हर चीज़ की बेहतरी सच्चाई है और हर चीज़ का फसाद झूठ है। अब अगर यानी जो रूट कॉज है बुराई का, गलत काम का, वो झूठ है, झूठ के जरिए फसाद फैलता है। आप एक झूठ के पीछे आप हज़ार झूठ बोलने पड़ते हैं और एक सच आप बोलते हैं तो हज़ारों रास्ते खुलते हैं। इसलिए हमें, हमारे लिए ज़रूरी है कि अगर हमारी ज़िंदगी में हमें कामयाबी चाहिए तो मियाँ बीवी रिलेशनशिप में सच को फैक्टर मानना चाहिए, सच को आगे लेके जाना चाहिए। आपको एक स्टेप लेना अपनी ज़िंदगी में कि मुझे ऑनेस्ट रहना है अपने साथ, अपने बच्चों के साथ और अपने शौहर के साथ, मैं अपनी ज़िंदगी में ऑनेस्ट हूँ या नहीं हूँ, आया मैं उससे कुछ चीज़ें छुपाती हूँ या नहीं, कुछ ऐसी बातें जो मैंने उसको नहीं बताई हैं। हो सकता है आपकी शादी से पहले की ज़िंदगी बहुत डिफरेंट रही हो शादी के बाद की ज़िंदगी से, और आपका शौहर आपसे पूछे कि शादी से पहले आपकी लाइफ कैसी थी, आप मुझे बताएं, तो आप कहेंगे मुझे क्योंकि ऑनेस्ट रहना तो मैं उसको हर चीज़ बता देती। नहीं, आपको हर चीज़ नहीं बताना अपने शौहर को कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लाइफ कैसी गुजारी। अपनी बुराई जो अगर माजी में कोई बुराई हो चुकी है तो वो नहीं है कि आप उसको बताएं, ज़रूरी नहीं कि बताएं, बल्कि आप उसको कवर करने की तरह आपके ठीक है, जो पास था वो था, अब जो लाइफ है वो हमें अच्छी गुजारनी है, लेकिन अपने अपने बुराई को ना दें दूसरे के हाथ में, क्योंकि इंसान आज आपका दोस्त है कल आपसे मुखालिफ भी हो सकता है। इसलिए अगर कोई गलत काम हुआ है, कोई बुराई हुई है, तो ठीक है, आपके इंसान इंसान से खता गलती होती है, इंशाल्लाह खुदा बख्शने वाले, हमें आप अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजारनी है। इसके मियाँ बीवी के लिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जो चीज़ मोहब्बत को डेवलप करेगी, जो चीज़ मोहब्बत को बढ़ाएगी, वो है एक सच्चाई, दोनों का एक दूसरे के साथ ऑनेस्ट होना। इसके बाद जो एक और चीज़ है जिससे मवद्दत पैदा होगी, वो फॉरगिवनेस है, वो माफ़ कर देना है, ऑफ़ कर देना है। इसको इंशाल्लाह अगली क्लास में और डिटेल में बयान करेंगे। यहाँ हम सिर्फ स्टार्ट ले रहे हैं इस बात से कि ज़िंदगी गुजारने के लिए, कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए, अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए मियाँ बीवी को एक दूसरे को फॉरगिव करना चाहिए, माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि गलती तो हम सब से होती है, हम सब गलत करते हैं, हम सब से गलतियाँ होती हैं। तो फिर मेरे दिल में बेउनवान शौहर, मेरी बीवी ने इतनी इतनी सारी गलतियाँ की तो मैं उसको माफ़ नहीं करूँगा, तो अब क्या मैं खुशी से ज़िंदगी गुजार सकता हूँ? मैं नहीं गुजार सकता, मैं खुशगवार ज़िंदगी नहीं गुजार सकता अगर मेरे दिल में मेरे वाइफ के लिए और मेरी वाइफ के मेरे दिल मेरे मेरे लिए ये फीलिंग्स हो कि मैं इनको माफ़ नहीं करूँगी, इन्होंने मुझे बहुत तकलीफ की, या शुरू में तो उन्होंने ये किया ये किया ये किया मैं नहीं, या मिसाल के तौर पे कोई और रिलेशनशिप हो मियाँ बीवी के अलावा, तो बाप बेटे का हो, माँ बेटी का हो, सास बहू का हो, किसी का भी रिश्ता हो, उसमें जमा हो गई हो, एक्यूमुलेट हो गई हो चीज़ें कि जिनकी वजह से अब आप उसको माफ़ नहीं करते, तो नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा कि घर के अंदर मोहब्बत का एनवायरनमेंट ख़त्म हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि आप माफ़ नहीं कर रहे। जो तकलीफ उसने दिया है, जो टॉर्चर आपको दिया है, आपको हम जब भी याद आता है तो आपका दिमाग एकदम घूम जाता है, आप उस आग में जलने लगती हैं, और आप कहती हैं मैं बदला लूंगी, एक दिन आएगा कि मैं बदला लूंगी। या बास खवातीन तो जाके इमाम बारगाह में ताला लगा देती है, जरी में ताला लगा के आती है, या वो डोरी ताला लगा देती है।
What's the remedy for that? What if you want to forgive someone but you can't do it? How do you do
yeah,
that?
You have to ask Allah subhanahu wa ta'ala to bless you with this blessing that you should forgive that person. I'll just come up to that. خداوند عالم نے یہ بتایا کہ ایک مرد مخاطب ہو کر مردوں سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان لانے والوں تم تمہاری زوجہ تمہاری بیویوں تمہاری اولاد تمہاری دشمن ہے، یعنی بعض تمہاری بیویاں اور بعض تمہاری اولاد تمہاری دشمن ہے، تم ان سے ہوشیار رہو اور ان کو معاف کر دو اور ان کے گناہوں کو کور کر دو، اس کو بھلا دو۔ یہ تین لینگویج ہے، اس میں آگے ڈیٹیل میں بات کروں گا۔ یعنی یہ پہلے زمانے کی بات ہے کہ جب زیادہ زیادہ بیویاں ہوتی تھیں اور لوگ ایمان لے کر آتے تھے تو پھر ان میں سے بعض ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے اپنے میاں کے ایمان کو، وہ ان کو تنگ کرتے تھے، اذیت کرتے تھے، بچے کی مخالفت کرتے تھے۔ ایک اس کا پہلو یہ تھا ہسٹری کا، ایک پہلو اس کی تفصیل کا یہ کہ آج کے دور میں بھی بعض بیویاں ایسی جو اپنے میاں کو مجبور کرتی ہیں کہ وہ غلط کام کے ذریعے پیسہ لے کر آئیں، چاہے کہتے ہیں نا ادھر بائی ہک اور کروک آپ پیسہ لے کے آئیں مجھے زندگی گزارنی ہے، چاہے آپ رشوت لیں، چاہے آپ جھوٹ بولیں، چاہے آپ چوری کریں، میری نیڈس کو پورا کریں تو میں آپ کو محبت دوں گی، میں گھر کو پیسفل انوائرمنٹ دوں گی۔ بس بچے بھی ایسے ہوتے ہیں اپنے ماں باپ کو تانا دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں کہ آپ ہمیں لا کے دیں چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تو ایسے اولاد کے جو باپ کے ایمان کو خراب کر دیں، اس کو غلط کام کرنے پہ مجبور کر دیں، اس سے خدا نے کہا ہے کہ ان لوگوں سے تم ہوشیار رہو۔ لیکن انہوں نے جو خطائیں کی ہیں، جو غلط کام کیے ہیں، جو تمہیں تکلیفیں دی ہیں، تم پھر بھی ان کو معاف کر دو۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، خداوند عالم ہمیں یہ بتا رہا ہے، یعنی سب لوگوں کو یہ بتا رہا ہے کہ عفو ایک پہلا مرحلہ ہے، معاف کرنا ایک پہلا مرحلہ ہے، کیونکہ جب آپ کسی کو معاف کریں گے تو انتقام لینے کا، ریونج لینے کا دل سے آپ کے نکل جائے گا۔ جب ہم کسی کو معاف کریں گے تو ہمارے، اگر معاف نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس سے بدلہ لینا چاہتے ہیں، ریونج لینا چاہتے ہیں، اور ریونج لینے یعنی ایک فائر ہمارے اندر آلریڈی برن ہو رہا ہے، یعنی میرے جسم کے اندر، میرے دماغ کے اندر ایک آگ لگی ہوئی ہے، وہ لکڑی جل رہی ہے، تو میری زندگی کیسی ہوگی؟ اگر میں آگ لگی تو وہاں پیسفل انوائرمنٹ کیسے ہوگا؟ کبھی ہوگی نہیں، کیونکہ میں جب بھی اس واقعے کو سوچوں گا یا جب بھی میں اس چہرے کو دیکھوں گا وہ آگ لگ جائے گی، اور جیسے وہ آگ لگے گی تو میں خود پیس میں نہیں رہ سکتا، میں خود ایز نہیں رہ سکتا، میں خود خوش نہیں رہ سکتا، میں خود پریشان رہوں گا اور پلان کرتا رہوں گا کس طرح مجھے اس کو پھنسانا ہے، کس طرح اس کو تکلیف دینی ہے، کیا کرنا ہے، تو میں پازیٹو جانے کے بجائے نیگیٹو جانے لگوں گا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کوئی بھی ریلیشن ہو۔ تو خدا بند عالم آ کے آپ سے کہتا ہے کہ آپ اس کو عفو کر دیں، معاف کر دیں، کیونکہ جب آپ معاف کریں گے تو یہ آگ بجھ جائے گی، جب یہ آگ بجھ جائے گی تو یہ نارمل انوائرمنٹ ہو جائے گا، خدا آپ کو اس کے بدلے میں بہت کچھ دے گا۔ اگر میں معاف نہیں کرنا چاہتا، اس کا مطلب ہے کہ میں بہت زیادہ تکلیف میں ہوں، تو میں خدا سے کہوں گا خدا ہے یہ کیوں کہ آپ کے کہنے پہ میں معاف کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، تو اس کا ثواب آپ ہی کو دینا ہے، کیونکہ دو چیزیں، جس کا ثواب اتنا زیادہ ہے، اتنا زیادہ ہے کہ اس کو وزن نہیں کیا جا سکتا، اس کو ویٹ میں میجر نہیں کیا جا سکتا۔ یہ حدیث میں آ گیا ہے، امام علی نے بتایا کہ دو چیزیں ایسی ہیں اس کا وزن اتنا زیادہ ہے، اتنی ہیوی ہے کہ ان کو آپ ویٹ بھی نہیں کر سکتے، اس کا ثواب اتنا ہے، ایک عفو کر دینا، فرگیو کر دینے کا، اور ایک عدل کرنے کا، جسٹس کرنے کا۔ جہاں یہ دونوں ساتھ ہوں گی وہاں انوائرمنٹ بہت اچھا ہو جائے گا، ہمیشہ انوائرمنٹ اچھا بن جائے گا جہاں پہ لوگ معاف کر دیں اور انصاف کریں۔ یہ دو بڑی سوسائٹی کے لیے، خود فیملی کے اندر بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ ایک چیز جو خدا نے کہی اف، اور ایک صف، یعنی آپ اس کو اوور لک کر دیں۔ خاص طور سے مرد کو یہ کہا جاتا ہے کہ اپنی بیوی کی چھوٹی چھوٹی مسٹیکس کو اوور لک کر دو، ہر وقت اس کو پن پوائنٹ مت کرتے رہو۔ اس طرح ہو سکتا ہے بیوی بھی ہو کہ وہ میاں کی اتنی ساری چیزوں کو دیکھتے ہو کہ یہ بھی صحیح نہیں کرتے، یہ بھی غلط کرتے ہیں، یوں ہے، یہ ہے، انہوں نے یہ کیا، یہ تکلیف دی، یہ کہا سب کے سامنے، یا پتہ نہیں ہزاروں چیزوں سے ذہن میں ہو، تو اس کا خدا کی کہنا اس کو فرگیو اٹ، فرگیو کرو، اوور لک کرو مسٹیکس کو، ایسے جیسے تھا ہی نہیں بھلا دو، کیونکہ تم جو یہ یاد رکھتے ہو اس سے تمہیں تکلیف ہو رہی ہے، اس کو تو نہیں ہو رہی۔ तकलीफ उसको होती है, इस आदमी कौन चल रहा है, मैं ही चल रहा हूँ, तुम्हें तुम क्यों चल रहे हो, तुम खुदा के साथ मामला करो और उसको माफ़ कर दो। जब तुम इसको माफ़ करोगे तो मोहब्बत कर दोबारा से मोहब्बत डेवलप होना शुरू होगी उसके दिल में भी और तुम्हारे दिल में भी, क्योंकि तुम माफ़ नहीं कर रहे हो उसकी मोहब्बत डेवलप नहीं हो पा रही क्योंकि डिस्टेंस आ गया। अब जो डिस्टेंस आ गया तो नज़दीक कैसे आएंगे, आग लगी हुई है नहीं आ सकते नज़दीक, इसलिए माफ़ करना ज़रूरी है। फिर गफरान कहते हैं इन्ना गफूर रहीम, ये गफरान क्या है, ये कवर कर रहे हैं उसके ऊपर, कवर कर देना यानी उसके ऐप को छुपा देना है। हम लोग को क्या होता है, जैसे बीवी ने तंग किया बेटा गया माँ के पास और माँ को बताया आ मेरी बीवी तो यूं यूं कहती है मेरे साथ, बेटी गई अपनी माँ के पास अपने मियाँ की शिकायत करने, ये तो मुझे यूं तंग करते हैं, मुझे ये कहते हैं, मुझे सबके सामने इंसल्ट कर दी और मुझे फलाना मुझे हिट किया, मुझे ये किया, मुझे वो किया, सारी बुराइयाँ अपने मियाँ की या अपनी सास की अपनी माँ को जाके या अपनी बहन को जाके कर दी, हल्की हो जाती है बयां करने के बाद। फिर कह रहा था खुदा कह रहा है कि ये सब मत करो, तुम्हारी अपनी फैमिली है, तुम्हारा अपना स्ट्रक्चर है, इसको बर्बाद नहीं करो। आज तुम तकलीफ में हो, कल को जब तुम्हारे हालात अगर बेहतर हो गए इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे तो फिर तुम क्या दूसरों को मुंह दिखाओगे। यही लोग जिनके सामने तुम अपने मियाँ और अपने लोगों की बुराई करती हो, यही लोग बैठ के तुम्हें बुरा कहने लगेंगे कि कल तक तो तुम सबकी बुराई करती थी, आज तुम्हारे हालात अच्छे हो गए तो तुम्हारे मियाँ की क्या रिस्पेक्ट रह जाएगी इन लोगों के सामने, क्योंकि अपने मियाँ की इतनी बुराई की अब तुम्हारे मियाँ को कोई इज्जत से नहीं देखेगा, सब उसको हमेशा दूसरों के मुकाबले में एज नहीं देंगे बल्कि कमतर तसव्वुर करेंगे, चाहे वो उसने बाद में तुम्हें सॉरी कर लिया हो, बाद में तुम्हें उसने कहा होगा चौके फगीर नहीं मैं गलत था आई मेड अ मिस्टेक, मैं दोबारा से मुझे एहसास हो गया इस बात का, लेकिन तुमने इतनी सारी बुराई कर दी दस लोगों के सामने उसकी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं रही। इसी तरह मियाँ का, जब मियाँ अपनी बीवी की बुराई अपनी माँ के सामने अपनी बहनों के सामने रिश्तेदारों के सामने करेगा या उसकी इंसल्ट करेगा तो वो कैसे रिस्पेक्ट महसूस करेगी कि अब उस माशरे में रहने के लिए अपने ससुराल में रहने के लिए वो कैसे महसूस करेगी, नहीं कर पाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए, यानी मैं अगर चाहता हूँ कि मेरी शख्सियत अच्छी हो तो एक निशानी आपकी अच्छी होने की जहाँ सच्चाई है कि आप सच बोलती हैं वहाँ ये कि आप माफ़ भी करती हैं। इसलिए हमने सीरा आइमा में यही देखा है कि आइमा ने माफ़ किया लोगों को, माफ़ कर दिया, क्यों, क्योंकि आपके अंदर कैपेसिटी इतनी है, आपका दिल इतना बड़ा है कि आप छोटी मोटी बातों को तो आप माफ़ कर देते। अगर आप माफ़ नहीं करेंगे तो आपके दिल में कीना होगा, हेट्रेड, जेलसी, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें पैदा हो जाएंगी आपके दिल में कि आप उसको डेवलप करना शुरू हो जाएंगे, उसको ग्रो करना शुरू हो जाएंगे। क्राउन होता है जो प्रिंस पहनती है, क्राउन पहने इस्लाम हदीस की रोशनी में कि क्या है कि अल अफ़ ताज लिल मकारिम, अखलाक का जो ताज है वो क्या है, वो माफ़ कर दें, यानी अगर अखलाक को हम सारे अखलाक को एक जगह जमा करें और उसमें से ताज को ढूंढने के लिए सबसे बेस्ट क्या है तो क्या है कि ये बेस्ट है कि आप सामने वाले को माफ़ कर दें, फॉरगिव कर दें, ये ताज है अखलाक का। तो फिर हम क्यों ना माफ़ करें, क्यों, क्योंकि हम नहीं जानते कि ज़िंदगी में कैसे वापस कैसे अच्छा माहौल को हमें बनाना है, कैसे हमें ज़िंदगी अपनी अच्छी बनानी है। आया एक शख्स अगर बीमार हो रहा है तो उसको मार दूँ क्योंकि डॉक्टर बोलेगा तो तुम्हें कैंसर हो गया इसलिए तुम्हें जल्दी मार देते हैं, इंजेक्शन दे देते हो तुम जल्दी मर जाओ क्योंकि तुम्हें कैंसर हो गया, या नहीं, हमें उसको बचाने की कोशिश करनी चाहिए, शायद किसी ट्रीटमेंट के जरिए वो वापस आ जाए। अच्छा अगर केस कैंसर का नहीं है, हो सकता है कोई लाइट केस हो, उसको जुकाम हो गया, तो हम कहेंगे अच्छा तुम्हें जुकाम हो गया तो तुम ठीक नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, तुम्हारा केयर हो सकता है, केस क्या है डिपेंड करता है। तो मियाँ बीवी की ज़िंदगी में कोई ऐसा खुदा ना खास्ता कोई क्रॉनिक किस्म का केस नहीं कि वो ठीक नहीं हो सकता या वो वापस नहीं आ सकता, वो आ सकता है, काम करना पड़ता है, दोनों को थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ता है, ज़िंदगी वापस बेहतर और खुशगवार हो जाती है। अक्सर आपने देखा होगा कि बुजुर्गान जो होते हैं वो दो आदमियों को मिला देते हैं, दो पार्टीज में अगर झगड़ा हो जाए, दो लोगों में झगड़ा हो जाए तो जैसे अच्छे गले मिल लो अहमद वाले मोहम्मद गले मिल लेते हैं और फिर उनकी जो टेंशन होती है वो ख़त्म हो जाती हैं। और कुरान की रोशनी में आगे इंशाल्लाह कल आपको बताऊंगा कि अगर बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि तुम्हारा दुश्मन, अगर तुम अपने दुश्मन को माफ़ कर दो तो वो तुम्हारा बेहतरीन दोस्त बन जाता है और बड़ा जिगरी दोस्त तुम्हारा बन जाता है और तुम्हारे मुफीद साबित होता है तुम्हारे लिए। इस तरह मियाँ बीवी की रिलेशनशिप में, घर की रिलेशनशिप में कि जिसमें सास बहू भी है और भी लोग हैं, आपको अगर अपनी शख्सियत अच्छी बनानी है, बेहतरीन बनानी है तो आपके अंदर माफ़ करने की क्वालिटी होनी चाहिए। अगर ये क्वालिटी आपके अंदर मौजूद होगी कि आप माफ कर सकती होंगी, तो आप अट्रैक्टिव होंगी सबके लिए, सब आपको पसंद करते होंगे। आज नहीं, यानी आज अगर आपने किसी को माफ किया तो उसका रिएक्शन, उसका असर आपकी जिंदगी में जो खुदा डालेगा 10 साल बाद 15 साल बाद आपको ये नजर आएगा कि आज जिन लोगों का आपने माफ किया 10 साल बाद 5 साल बाद उनकी तरफ से आपके लिए क्या आया। ये क्योंकि आपने खुदा से मामला किया, आपने कहा खुदा है क्योंकि ये आपको पसंद है मैं लोगों को माफ कर देती हूँ। जब आपने माफ कर दिया उस दिन आपको ज्यादा अच्छी नींद आएगी, उस दिन आप बहुत आराम से सोएंगी, गहरी नींद सोएंगी कि ओके फिनिश, मैंने सब, मैंने मेरा सब खत्म हो गया, जो भी था मेरे दिन में मैंने सब खत्म कर दिया खुदा के लिए। फिर खुदा आपके लिए रास्ते अच्छे बनाएगा, आपके लिए इन्वायरमेंट अच्छे बनाएगा आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन कहाँ आपको माफ नहीं करना है वो कल, वो नेक्स्ट क्लास में, क्या हर जगह हर को नहीं माफ करना, ऐसा नहीं होता सबको माफ करने की कर दिया बाद में मुश्किल आ गई, वाल साहब ने कह रहे माफ करो हमने तो माफ किया हमारे लिए मुश्किल खड़ी होगी, नहीं आपको वो भी बताएंगे कहाँ माफ नहीं करना है, किनको माफ करना है किनको माफ नहीं करना है, और माफ करना क्यों इंपॉर्टेंट है खासतौर से मियाँ बीवी की जिंदगी के लिए। फिर इंशाल्लाह क्योंकि टाइम कम है इसलिए मैं प्रॉब्लम्स को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, वो बाद में प्रॉब्लम्स को डिस्कस करूँगा। एक दो लेक्चर्स हम और भी मवद्दत की चीज़ों पे बात करेंगे, फिर हम एक जनरल डिस्कशन करेंगे कि जिसमें आप इश्यूज मुझे देंगी मैं आपको बताऊँगा, ताकि हम एग्जैक्ट उस एक सेंसिटिव एरिया से टच करें जिससे हमारी लाइफ में इम्प्रूवमेंट आए। उसके बाद कुछ सोशल एलिमेंट को, कुछ फैमिली की बात करके इंशाल्लाह इनको कोशिश करेंगे इसको जमा कर दें, खुलासा कर दें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।